السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے صبح کی سیر اپنی درسگاہ میں کرنے کا سوچا. اشراق پڑھنے کے بعد میں سیدھا قبرستان پہنچ گیا. صبح کا حسین وقت تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، خوبصورت ہوا چل رہی تھی، ماحول میں ایک تازگی کا احساس تھا. موسم بھی بڑا معتدل تھا، نہ ٹھنڈ تھی نہ گرمی تھی. میں نے ایک گہری سانس لی، تازہ ہوا کو اپنے اندر محسوس کیا اترتے ہوئے. میں کتنا خوش قسمت ہوں، ان تازہ ہوا کے جھونکوں کو محسوس کر سکتا ہوں، سانس لے سکتا ہوں، موسم کو انجوائے کر سکتا ہوں، صبح کی تازگی کو سمجھ سکتا ہوں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ایک برابر ہے. عید قریب ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ ایک ہجوم ہے، ہر کوئی عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، مگر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے عید ہونا یا عام دن ہونا برابر ہے. باہر کا موسم حسین ہے یا نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے صرف ایک ہی موسم ہے، اور وہ ہے جو ان کی قبروں میں ہے، اور وہ ان کے اعمال کی وجہ سے. وہ اگر خزاں ہیں تو ہمیشہ خزاں ہی رہے گی، کبھی بہار نہیں آئے گی، اور اگر بہار ہے تو کبھی اس کے بعد خزاں نہیں ہے. ان پر موسم آتے جاتے نہیں ہیں، یہ صرف ایک ہی موسم میں رہتے ہیں جو رک چکا ہے ان کے لیے. میں ابھی ہوا کے جھونکوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا کہ دور سے کچھ مزدور ایک ریڑھی پر کچھ سامان رکھے آتے نظر آئے. یہ آج کہاں سے آ گئے؟ میں ان کی طرف بڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آج آپ کدھر ادھر نکلے ہیں؟ میں نے ان سے سوال کیا. ان میں سے ایک بولا، جی وہ ایک قبر ہے، اس پہ سنگ مرمر لگانا ہے. وہ کیوں؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا. وہ بولے، یہ صاحب کا آرڈر ہے، بڑے صاحب کی قبر کو پکا کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے. کہاں ہیں تمہارے صاحب؟ وہ تو نہیں آئے. مگر یہ تو صحیح چیز نہیں ہے. وہ میرے اس بات پر لاپرواہی سے بولا، ہمیں تو جو کام کہا گیا ہم تو وہی کریں گے. تم ذرا ٹھہرو، میں تمہارے صاحب سے بات کرتا ہوں، ان کا نمبر دو مجھے. ان میں سے ایک نے جیب سے موبائل نکالا اور نمبر نکال کے میری طرف بڑھا دیا. میں نے وہ نمبر ڈائل کیا. آگے سے ایک نوجوان نے فون اٹھایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کسی نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا. یہ آپ کے مزدور یہاں موجود ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان سے کہا ہے کہ یہ سنگ مرمر لگانا ہے قبر پر اور اس کو پکی کرنا ہے. شاید آپ کے والد کی ہے. جی ہاں. آپ کو کوئی اعتراض؟ جی نہیں پیارے بھائی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا. بس صرف ایک بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں. میرے بھائی، ہمارے دین میں قبریں پکی کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی کی قبر کچی ہے، آپ کی پیاری ازواج کی قبریں کچی ہیں، آپ کی بیٹیوں کی قبریں کچی ہیں، آپ کے صحابہ کی قبریں کچی ہیں. آپ نے تو قبر کو پکی کرنے سے منع کیا ہے، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا اور ہم سے بہتر لوگوں نے نہیں کیا؟ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر کہنے لگا، میں تو چاہتا ہوں کہ جیسے میرے والد شان سے دنیا میں جیے कब्र भी उनकी आलीशान ही होनी चाहिए। खूबसूरत सा एक कतबा भी मैंने डिजाइनर्स को ऑर्डर किया हुआ, और फिर कब्र भी ऐसी होनी चाहिए कि पता चले कि कोई बड़ा आदमी यहां आराम कर रहा है। मैंने उससे मुख्तसर सा सवाल किया, भाईजान क्या ऐसा करने से उनको कब्र में आराम मिलेगा? वो बोला, ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं उनकी इकलौती औलाद हूं, इसके सिवा मैं उनके लिए कर भी क्या सकता हूं। मुझे तो यही लगा कि मैं फादर्स डे पर उनको ये गिफ्ट दूं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, या अल्लाह, मगर मैंने खुद को पुरसकून रखते हुए कहा, मगर उनको अब कब्र के पक्का करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तोड़ देंगे। आप अपने वालिद को गिफ्ट देने के लिए फादर्स डे का इंतजार क्यों करते हैं? उनको तो रोजाना ही आप तोहफे भेज सकते हैं। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा, वो कैसे? आप उनको दुआओं के गुलदस्ते भेजें, कुरान पढ़ना सीखें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, उसकी तालीम लें, नेक आमाल करें और उनके लिए सदका जारिया बने। उनके लिए इन पत्थरों को लगाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो खर्चा आपने इन पत्थरों पे लगाना है, वो पैसे उनकी तरफ से सदका कर दीजिए। उनको इससे जो सुकून मिलेगा, वो पत्थर लगाने से नहीं मिल सकता। आप उनके नाम की कोई मस्जिद तामीर करा दें, किसी मस्जिद की तामीर में हिस्सा डाल दें, या कुआं खुदवाने में हिस्सा डाल दें, लोग पानी पिएंगे और आपके वालिद के लिए अजर का ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। किसी दीन के तालिबे इल्म की पढ़ाई का खर्चा अपने जिम्मे ले लें, या और कुछ नहीं तो मंथली कहीं डोनेशन बांध दें उनकी तरफ से। मैं कहता ही चला जा रहा था और वो खामोशी से मेरी बातें सुन रहा था। जब मैंने बात खत्म की तो वो लंबी सांस लेते हुए बोला, आपने बात तो सही की है, इट मेक्स सेंस। पैसे तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, मगर जो बाकी आप सब कह रहे हैं ना, कुरान की तालीम लेना, पढ़ना, इसका मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मैंने बड़ी अपनाइत से उससे कहा, भाईजान अगर आप इल्म नहीं लेंगे तो आपकी औलाद भी आपके लिए संगे मरमर ही लगवा के समझेगी कि उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, और आपके पीछे दुआएं करने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी मसरूफियत में, आपके कामों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा आप देखिएगा आपके वक्त में कैसे बरकत होती है। अल्लाह के लिए जो वक्त निकाला जाए, वो बरकतों से भर जाता है। उसने मेरी बात सुनी तो कहने लगा, फिर क्या करूं मैं आपको एक इदारे का सारा पता टेक्स्ट करता हूँ, आप वहाँ कॉल कीजिए और आपको एक स्केड्यूल दे दिया जाएगा। आप बआसानी कुरान पाक सीख सकते हैं और अपने वालिद के लिए सदका जारिया बन सकते हैं। मैं उसको जानता तक नहीं था, मगर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर उसके लिए ये बातें निकल रही थी। फिर मैंने उससे बड़ी अपनाइयत से कहा, प्यारे भाई, हो सकता है आपके वालिद पर कोई कर्ज हो, उसका भी ज़रूर पता कीजिए, और ये पत्थर लगवाने से पहले उनका कर्ज अदा करने की कोशिश कीजिए। वो कहने लगा, हाँ, कर्ज तो वो छोड़ के गए थे। तो भाईजान, उस कर्ज की वजह से उनकी रूह मुअल्लक रहती है, आप प्लीज उनका कर्ज अदा करने की जल्द से जल्दी कोशिश करें, चाहे किस्तें बांध लें, ताकि आपके वालिद की रूह को आराम पहुंचे। वो कुछ अफसरदा से लहजे में बोला, लेकिन हमारे वालदेन ने ये बातें कभी हमसे नहीं की थी, वरना शुरू से ही हम ये सब कर लेते। ना उन्होंने बताया, ना हमने कभी जानने की कोशिश की। हमारे वालिद को दुनिया से गए हुए 7 साल हो चुके हैं। वो तो अब मुझे उनको गिफ्ट देने का आइडिया सूझा, तो यह जहन में यही आया कि उनकी कब्र पे मार्बल लगवा दूं, फिर एक खूबसूरत सा शेड ऊपर बनवा दूं, और इस तरह उनका ये नया घर भी आरामदेह हो जाएगा। मगर आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में आ रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये फ़ोन ज़रा इन मज़दूरों को दे दें। मैंने फ़ोन एक मज़दूर के हाथ में दिया। जी सर। इसके बाद साहब ने कुछ हिदायत उस मज़दूर को दी। जी सर, जैसे आप कहते हैं। उसने फ़ोन पे बात करके फ़ोन मुझे लौटा दिया और बोला, साहब जी, आज एक दिहाड़ी मिली थी और वो भी आपने ख़त्म करा दी। मुझे अफसोस तो हुआ, मगर मैंने उससे कहा, भाई, एक गलत काम में मदद करने के लिए आप जा रहे थे, अल्लाह आपको इससे बेहतर रोजी देगा। मैंने जेब से 100-100 के 2 नोट निकाले और उनकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने कुछ झिझकते हुए कबूल कर लिया, और मैं खड़ा सोचने लगा, इनकी मजदूरी आज मेरी जेब में अल्लाह ने डाली थी। इनकी खातिर अल्लाह ने आज मुझे सुबह सुबह भेजा, वरना मैं इस वक्त में कब्रिस्तान नहीं आया करता था, और इनको भी यहाँ पहुँचाया। वाकई जिसका रिज्क अल्लाह ने जहाँ लिखा हो वहाँ उसको पहुँचा देता है। और फिर देखो, अल्लाह ने कोई भलाई चाही उस फौतशुदा के लिए, तो उसके बेटे से मेरी बात करवा दी। मुझे उसकी खातिर यहाँ भेजा कि मैं उसके बेटे की सही रहनुमाई कर दूँ, और हो सकता है वो उसके लिए सदका जारिया बन जाए, हो सकता है उसका कर्ज अदा हो जाए। मैं हैरान था कि आखिर लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते कि मेरे मरने के बाद ये करना। आखिर इस टॉपिक पर बात करने से इस कदर क्यों घबराते हैं? गोया इस पे बात करने से ही इनको मौत आ जानी है, या शायद वालदैन को खुद भी इल्म नहीं होता, तो वो आगे औलाद को क्या सिखाएंगे? बेइल्मी भी इंसान को कहाँ तक पहुंचा देती है। इंसान अच्छी नीयत से कोई अमल करना भी चाहता है, मगर जब पीछे इल्म ही ना हो तो अच्छी नीयत भी कोई फायदा नहीं पहुंचाती। कितना ज़रूरी है कि हम भी इल्म लें और अपनी औलादों को भी दीन का इल्म दें, ताकि वो हमारे पीछे वो काम करें जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। मैं इन्हीं सोचों में कब्रिस्तान से रवाना हुआ और तहैया कर लिया कि अपनी औलाद से हमेशा इस टॉपिक पे बात करता रहूँगा, उनको दीन की तालीम दूंगा। अल्लाह ताला हमसे भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए कि हम खुद भी दीन का इल्म लें और अपनी नस्लों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।